आइए दोस्तों, आज के आवारा की बातें के इस एपिसोड में कुछ अछूते संदर्भों पर अजय आवारा जी के साथ एक संवाद करते हैं।
नमस्ते अजय सर, कैसे हैं आप?
नमस्ते भावना जी, हम अच्छे हैं। और अच्छी बात यह है कि पूरा हिंदुस्तान बारिश में भीगा हुआ आजकल।
जी जी बिल्कुल। और आज आप आवारा की बातें में क्या लेकर आए हैं?
आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिस पर शायद लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा, और मैं ये नहीं कह सकता कि किसी के दिमाग में ये विचार नहीं आया, लेकिन ये विचार शायद लोग जल्दी से समझ नहीं पाते। एक बहुत ही अजीब सी बात मैंने नोटिस की है, लोगों के मानसिकता में देखी है। शायद पता नहीं ये मानसिकता हिंदुस्तान में ही है या दुनिया के और देशों में भी है। खासतौर पर मैंने हमारे समाज में ये देखा है कि हम बहुत बात करते हैं कि सबका सम्मान करने की।
जी।
और सबका सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, और सम्मान करना ही इंसानियत की पहचान है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम सबका सम्मान कर रहे हैं तो अपना अपमान ना करें।
बिल्कुल।
सबका सम्मान, इसका सबके सम्मान का मतलब ये नहीं होता कि हम गलत हो गए। हाँ, अब तो हमें अपने का अभिमान तो करना जरूरी है।
बिल्कुल।
हाँ, हमें इंसानियत का घमंड नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने देश, अपने जो भी हमारे तौर तरीके हैं, हमें उस पर शर्मिंदा नहीं होना है। हम आजकल मैंने देखा है कि लोग में ये फैशन बन गया कि हम सबका सम्मान करते हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे देश हो। और जब सम्मान की बात करते हैं तो हम जाने अनजाने कहीं अपनी बुराई करने लग जाते हैं।
जी जी, जाने अनजाने क्या कई जगह तो जानबूझकर भी होती हैं ये सब बातें। बिल्कुल ठीक है।
क्या हो गया है कि लोग आजकल एक ट्रेंड बन गया है, कि फैशन बन गया है कि अपनी बुराई करो तो आप कहते विकसित कहे जाएंगे, आज आधुनिक कहे जाएंगे। और जब आप अपनी संस्कृति की बुराई करते तो आपको आधुनिक कहा जाता है, अगर आप अपनी संस्कृति की बात करते तो आपको रूढ़िवादी पुराने लोग कह दिया जाता है।
जी जी।
और फिर कहेंगे आप आधुनिकता से दूर हैं। तो ये जो परंपरा चल पड़ी है नई, चाहे आप धर्म में लगा लीजिए, चाहे राजनीति में लगा लीजिए, चाहे देश की बात कर लीजिए, बहुत गलत परंपरा चली है। और मेरे विचार से इसका बीज शायद कैसे पड़ा होगा, मैं इस बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ, अगर आप चाहें तो। मुझे लगता है, मुझे मेरा विचार है, मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, कि हमारा देश काफी वर्षों से गुलाम रहा है। और इस गुलामी में, चाहे वो मुगलों की गुलामी रही हो, चाहे वो अंग्रेजों की गुलामी रही हो, हम मतलब पर संस्कृति के अधीन रहे हैं। 800 साल मुगलों के अधीन रहे हैं और 200 साल हम अंग्रेजों के अधीन रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया कि हमें ये लगने लगा है कि हम तो बस दबे हुए हैं, हम तो पिछड़े हुए ही हैं। हमें सिखा दिया गया कि क्योंकि आपकी संस्कृति, आपका आपकी परंपरा, आपका जो तौर तरीका है वो सही नहीं है, इसलिए आप हमारे गुलाम हैं। अब क्योंकि आप हमारे गुलाम हैं तो आपका कुछ भी सही नहीं है। और शायद ये मानसिकता हमारी भारतीयता में घर कर गई है कि हमारी भारतीयता ही पिछड़ी है, हमारी पहचान ही पिछड़ी हुई है। और हमने शायद इसको अपने एक आदत बना लिया है कि दूसरे का सम्मान, अपना अपमान इसमें ही समझदारी है। हम मानसिक गुलाम हो गए, मानसिकता से उभर ही नहीं पाए हैं। आप ये हिसाब अगर देख सकते हैं कि जब भी हम भारतीयों की बात करते हैं हमें रूढ़िवादी कहा जाता है, और जब हम अंग्रेजों की बात करते हैं, पाश्चात्य की बात करते हैं तो हमें आधुनिक कहा जाता है।
जी जी।
और मुश्किल बात ये हो गई कि आधुनिकता को हम लोगों ने पर संस्कृति से जोड़ लिया है, अपनी संस्कृति से दूर कर दिया है।
जी।
अब हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि अगर हम पर संस्कृति से जुड़े हुए हैं तो हम आधुनिक हैं। और मुश्किल ये आ गई है कि सबको आधुनिक कहने में गर्व होता है, सबको अपनी संस्कृति का पाला और कहने में गर्व नहीं होता। जैसे आप किसी और देश में जाएंगे तो सब अपनी संस्कृति को घमंड करते हैं कि हमारी संस्कृति हम फॉलो करते हैं और आपकी संस्कृति का सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मान लिया गया है कि अगर आप किसी संस्कृति का, किसी चीज का सम्मान करते हैं तो आप उसको ही फॉलो करें।
जी जी बिल्कुल ठीक है।
हाँ, ये कैसे मान लिया गया है? जैसे हम कहते हैं कि अगर हम पाश्चात्य संस्कृति अच्छी है, अब अच्छी है तो हम उसकी तारीफ करेंगे तो अच्छा माना जाएगा ना।
जी जी।
और जाने अनजाने तुलना हम अपने आप से करते हैं, किसी और से तुलना नहीं करते। जैसे आप यूरोपियन अंग्रेजी संस्कृति की तुलना हम अफ्रीका से नहीं करते, हम उसको अरब से नहीं करते, हम उसको रशिया से नहीं करते, बहुत देशों से नहीं करते, हम भारतीयता से उसकी तुलना करते हैं।
जी जी।
है ना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब तुलना कर रहे हैं तो हम उस तुलना से, उस संस्कृति से तुलना कर रहे हैं जो विकृत हो चुकी है।
बिल्कुल ठीक है।
अगर आप बात करें भारतीय संस्कृति की, तो भारतीय संस्कृति का जो असल रूप है बहुत ही विकसित है, बहुत ही वृद्ध है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में लगा लीजिए, चाहे आप आध्यात्मिक क्षेत्र में लगा लीजिए, चाहे सामाजिक क्षेत्र में लगा लीजिए। लेकिन हुआ क्या है कि चूंकि विदेशी आक्रांतकारी आते रहे और हमें नष्ट करते रहे, जब विदेशी शासन हम पर आया तो उन्होंने हमारे भारतीय संस्कृति के मूल को नष्ट करना शुरू किया। जैसे उदाहरण लगा लीजिए, उन्होंने हमारी हमारे औरतों पर नजर डाली, हमारी और मतलब अन्याय करने लगे। उनसे बचने के लिए अलग अलग रीति रिवाज हमारे समाज में आ गए, और जो उनसे बचने के लिए जो रीति रिवाज आए थे उसको हमने परंपरा मान लिया, और हमारी जो मूल परंपरा कहीं और छूट गई। अब चूंकि जो परंपरा हमारे बीच में आई थी उसका आधार तो था नहीं, अब हमें आधार नहीं था तो हमें पता ही नहीं हम इसको निभाते क्यों है। और अब ये हमारे दिमाग में बात धर कर गई है कि जो परंपरा हम निभा रहे हैं उसका आधार ही नहीं है। और सही बात है, जो हम निभा रहे हैं उसका आधार नहीं है, इसलिए हमें दूसरी अच्छी लगती है, लेकिन जो हमारी मूल परंपरा है उसको हम भूल चुके हैं।
बिल्कुल ठीक।
अब ये उदाहरण दे सकता हूँ मैं आपको, अगर हम सनातन की बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो कहते हैं सनातन लगा लीजिए, हम हिंदू धर्म नहीं बोलेंगे, धर्म सनातन है, हिंदू समुदाय है। अब सनातन में कहीं भी घूंघट प्रथा या बाल विवाह नहीं है।
बिल्कुल।
कैसे आया, जब विदेशी आक्रांत आए, उन्होंने हमारी स्त्रियों को उठाना शुरू किया और जबरन ले जाने लगे, तो हमें हमारी घूंघट प्रथा आई कि अगर पर्दे में रहेंगी स्त्रियां तो उनकी सुंदरता का पता नहीं चलेगा, तो शायद सुरक्षित रहे।
जी जी।
ये जो रिवाज आया था, ये एक परिस्थिति वश आया था, ये हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है। हमारी परंपरा में तो पर्दे की प्रथा है ही नहीं, अगर आप हमारी संस्कृति को पढ़े। अब हुआ क्या, हमने इसको भी परंपरा मान लिया, घूंघट को, पर्दे को।
जी जी।
और जब आधुनिकता की बात आई तो हमने देखा भाई अगर घूंघट और पर्दे में कोई अचेत है ही नहीं।
बिल्कुल।
अब इसमें हमें अचेत नजर नहीं आ रहा, तो हम तुलना क्या करते हैं कि हम तो वो उसको फॉलो करें जिसका अचेत नहीं है। तो बिल्कुल सही बात, लाजमी बात है, हम उसको फॉलो करें जिसका अचेत नहीं है, और उसको फॉलो कर रहे हैं, और जो विदेशी लोग लेकर आए उसका अचेत है, आधार है, तो जाहिर तौर पर हम उसको ही फॉलो करेंगे ना।
जी जी।
वो क्या, लेकिन हम पर्दे की परंपरा को फॉलो करते करते हम ये भूल गए कि हमारे हिंदू संस्कृति में इसका आधार था ही नहीं, और ये कैसे आएगा।
जी। और जानने की कोशिश भी नहीं की हमने।
हमने जानने की कोशिश नहीं की। मैं बताता हूँ, पिछले दिनों एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति हैं और अच्छे साहित्यकार हैं और विदेशों में भी रहे हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उनसे जो वो हमारी परंपराओं की बहुत सी मतलब बुराई कर रहे थे, जी इसका आधार किया, उसका आधार किया, उसका आधार किया। तो मैंने बोला, देखिए श्रीमान, माना कि आपने जो सवाल उठाया ये बहुत सही सवाल है कि इसका आधार आपके पास नहीं है, लेकिन अगर इसका आधार हमें नहीं पता तो क्या हमने जानने की कोशिश की कि इसका आधार है क्या।
जी।
जैसे आधार लगा लीजिए, आप एक उदाहरण लगा लीजिए, बहुत ये पिछले दिनों अभी श्राद्ध का महीना निकला और ग्रुप में और साहित्य में बहुत चर्चा चली कि क्या श्राद्ध का पालन करना उचित है या अनुचित है। तो उन्होंने बोला कि हम श्राद्ध में जो दान करते हैं वो तो पुरुषों तक पहुँचता ही नहीं है, वो नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैं इस बारे में बहस में नहीं जाऊंगा कि वो पुरुषों तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता है, लेकिन सवाल ये उठता है, हमने ये तो सवाल उठा दिया कि जो हम श्राद्ध दान करते हैं वो पुरुषों तक पहुँचता नहीं है, ठीक है ना।
जी।
ये परंपरा किस आधार पर शुरू की गई थी, क्या इसलिए शुरू की गई थी कि पुरुषों को हम खाने खा ले खिलाते हैं। मेरा मानना है कि ये आधार नहीं रहा है। ये होता क्या है, जब हम परंपरा की बात करते हैं, मान लिया मैंने एक परंपरा शुरू करी, और जब मेरा बेटा उस परंपरा के बारे में अपने बच्चों को बताएगा तो मेरे मूल रूप से थोड़ा हटके ही जाएगा वो।
जी बिल्कुल।
ये होता क्या, जब हम एक बात किसी को बताते हैं और दूसरा आदमी तीसरे को बताता है तो पहले से उसका मूल रूप बदल जाता है, और जब वो 10 लोगों के मुंह से बदलती है तो बात का रूप बदल गया होता है।
बिल्कुल बिल्कुल।
अब चूंकि हमारी परंपराएं मौखिक रूप से स्थानांतरित होती आई है, तो वो स्थानांतरण में इतना बदल गया है कि हमें उसमें मूल रूप पता ही नहीं है, आधार क्या था उसको निभाने का। अब चूंकि 10वीं पीढ़ी के बाद उसका रूप इतना बदल गया है कि हमारे पास आधार ही नहीं बचा है, तो हमें पता ही नहीं हम करते क्यों है।
जी जी।
तो अब ये श्राद्ध का उदाहरण ले लीजिए, हमें नहीं पता श्राद्ध क्यों निकालते हैं हम। अब मेरे को क्या लगता है, शायद श्राद्ध की परंपरा से शुरू की गई होगी कि जो पूर्वजों ने जो विद्या जो गुण हमें दिए हैं उसको हम याद करें, उसको सजो।
बिल्कुल। बड़ों का सम्मान करें, इस चीज का हमें एक संदेश मिलता है इन बातों से।
जैसे 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 हमारे यहाँ माना जाता है कि अगर हमने किसी महापुरुष को याद करना तो कैसे करेंगे याद, हम सिर्फ जयंती मनाते हैं।
जी जी।
अगर हम प्रेमचंद याद करते क्या करते हैं, जयंती मनाते हैं ना।
बिल्कुल।
साहित्य पढ़ते हैं, और हमारे परिवार में अगर कोई बुजुर्ग रहा है तो हम उसको कैसे याद करेंगे। कोई सवाल है, कोई कोई कारण नहीं है ना हमारे पास। जैन जी को मैं याद करते जो बड़े रहते करते हैं उनके सम्मान करने की जयंती पूरे देश मनाता है, लेकिन अगर मेरे परिवार में कोई बुजुर्ग रहा है मैं उसको सम्मान कैसे दूंगा, क्योंकि जयंती तो फिक्स नहीं है ना
जी।
क्योंकि सनातन में हमारे संस्कृति में जन्मदिन मरेंगे तो जन्मदिन मनाने का आधार तो है ही नहीं। तो ये मान लिया गया जिस तिथि में उनका विश्वास पड़ता है उस तिथि को उनको याद किया जाए, उनकी परंपराओं का अनुसरण किया जाए।
और एक चीज और है ना सर, हमारी सनातन संस्कृति का एक अच्छा उदाहरण है कि हम 16 पीढ़ियों के मतलब अपने पुरखों को अपने पूर्वजों को याद करते हैं, हमें ये मैसेज मिलता, वो हम करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन हमें एक सनातन संस्कृति हमारी एक ये संदेश तो देती है ना कि हम तो मतलब अपने माता पिता का अपमान आजकल लोग कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर पाते, तो हमें तो 16 पीढ़ियों का करने के लिए एक संदेश मिलता है।
तो लेकिन लोगों को याद नहीं है ना कि 16 पीढ़ियों को याद कैसे करना है, 16 पीढ़ी के नाम को आप याद नहीं, उनकी तिथि याद नहीं है आपको, तो तिथियां याद नहीं 16 पीढ़ी की, तो आप साथ के मेहनत करते थे
बिल्कुल
है ना। अब 16 पीढ़ी में हमारे कौन कौन थे, उनकी क्या क्या परंपराएं थी, क्या क्या गुण थे, हम कैसे याद करेंगे, उनको हम सम्मान कैसे देंगे। तो हमने इससे भी कह दिया कि खाना वहां तक नहीं पहुंचता, अरे खाना वहां तक नहीं पहुंचता, लेकिन आप उनको याद किस आधार पर करेंगे, ये तो परंपराएं थी, उनकी पसंद की चीज बनाई जाए उनकी, तो इसी बहाने हम उनको याद करते हैं। तो
उसी बहाने उस दिन हम कुछ मतलब जो गरीब है जिनके पास खाने को नहीं उनको कुछ दे सकते हैं, ये एक बहाना बन जाता है देने का, एक अच्छा कार्य होता अगर हम उसको करें उस तन्मयता से। तो
हुआ क्या, जब तक विदेशी हुकूमत हम पर रही है तब तक हमने यही नहीं जानने की कोशिश की, मैंने उनसे पूछा कि अगर हमें नहीं ठीक है नहीं पता है हमारा हम क्यों करते हैं, तो क्या हमने जानने की कोशिश की, रिसर्च की इस पर शुरू कैसे हुई थी, आखिर कैसा किसी कारण से शुरू हुई होगी ना। हम अपनी परंपराओं को जानने की कोशिश ही नहीं करते कि ये शुरू कैसे हुई थी और क्यों की जाती है,
बिल्कुल
तो हम उससे नकार देते कि गलत, हम जानने की कोशिश नहीं करते, जबकि हम विदेशी संस्कृति का तो हम कहते रिसर्च करते हैं, अपनी संस्कृति की रिसर्च क्यों नहीं करते
जी।
तो विदेशी अब ये कहना कि हमें आधुनिकता का सम्मान करना है, ठीक है आधुनिकता का सम्मान कीजिए, लेकिन आप जाने बगैर अपनी परंपरा को नकार दे, अपने आप को नकार दे, क्या ये सही है, आप जाने की कोशिश तो कीजिए ना
जी जी।
आप जाने की कोशिश कीजिए जिस परंपरा में निकाल रहे हैं वो वास्तव में थी या नहीं थी, अगर वो नहीं थी तो उसके पहले क्या था
जी,
ये हम नहीं करते।
और वो ठीक बात है कि मतलब अपने धर्म का अपनी संस्कृति का हम अगर अपमान भी कर देते हैं तो हम अपने को बड़ा मॉडर्न समझते हैं और सोचते हैं कि हम आधुनिक हो गए।
जैसे मैं बहुत ही ज्वलंत विषय उठा रहा हूँ, शायद पता नहीं शायद कई लोग इस बात से नाराजगी हो जाए, और जैसे एग्जाम्पल लगा लीजिए हम भाई बहुत ही कॉमन वर्ड यूज करते हैं आप हमारे भारत में आजकल, सेक्युलरिज्म
जी जी
है ना। अब सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या है, पहले तो आप ये सोचिए सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या है। सेक्युलरिज्म का अर्थ ये होता है कि सबका सम्मान और अपना अभिमान
जी
है ना, लेकिन सबके सम्मान आप सबके सम्मान का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपनी परंपरा को छोड़ दूं है ना
जी, जी।
आज क्या हो गया है हमारे धर्म में भी हो गया, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ आप इसी उदाहरण तक समझ पाएंगे। मेरे एक मित्र आए, उन्होंने अभी जो नवरात्रि चल रहे हैं ना अभी
जी, जी।
मित्र आए तो बोला कि हमारे नवरात्रि का कार्यक्रम होना है और बड़ा पंडाल लगा रहे हैं आप उसमें अनुदान कीजिए। मैंने ठीक है अनुदान करेंगे बिल्कुल करेंगे। तो कार्यक्रम की बात चलने लगी तो उनसे बातचीत करते करते ये बात आया कि हमारे हिंदू धर्म में तो कहते हमारे कोई आधार ही नहीं है, हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, हम किस किस को माने। मैंने कहा महोदय पहली बार 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, ये गलत इंटरप्रिटेशन है ना, और उसका विषय अलग है, इसका अलग बात है। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, अगर आप कहें तो मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन जितने भी अगर देवी देवता है, अगर हम 33 करोड़ नहीं है जितने भी है, अगर हम उनका सम्मान नहीं कर सकते, उनको हमारे पास औचित्य नहीं है उनको समझने का, तो फिर हम आप ये कार्यक्रम कर क्यों रहे हो। बोलते हम सेक्युलर, उन्होंने बोला हम सेक्युलर कंट्री, हम सबका सम्मान कर रहे हैं। ठीक है आप सबका सम्मान कीजिए, लेकिन अपने धर्म का आधार तो पहचानिए, आपको अपने धर्म का आधार ही नहीं पता और कार्यक्रम करने जा रहे हैं, फिर आप कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। ये सवाल आता है ना कि तो क्या हो गया है कि हम जो अपने धार्मिक रिसर्च करते हैं और जो धार्मिक रीति रिवाज निभाते हैं या धार्मिक जो पूजा पाठ करते हैं, हमें वो भी नहीं पता हम क्यों करते हैं।
बिल्कुल ठीक कहा सर,
है ना। अब अगर मुझे ईसाइयत का सम्मान करना है, इस्लाम का सम्मान करना है, बुद्ध का सम्मान करना है, बिल्कुल अच्छी बात है, इसे प्रेम बढ़ता है, इसे समाज में भाईचारा बढ़ता है, मुझे इस्लाम का सम्मान करना चाहिए, ईसाइयत का सम्मान करना चाहिए, भाईचारा बढ़े, मिलजुल के रहें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे आप इसका मतलब ये हो गया मुझे आपको जानना है, बहुत अच्छा जानना है, लेकिन मुझे अपने बारे में नहीं जानना है। अब ये मान लीजिए अगर मेरे अंदर कोई बुराइयां हैं, कमियां हैं, ठीक है, माना कि दूसरा धर्म बहुत अच्छा है और हमने इसे सम्मान किया, हमने उसका अनुसरण भी करने की इच्छा होती है, लेकिन अगर हमारे अंदर बुराई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसकी बुराइयों को दूर करने की कोशिश ना करें। या आप इसी तो इस तरह हो गया, दूसरे घर तो बहुत सुंदर बहुत साफ सुथरा है लेकिन मेरा घर गंदा है, ठीक है, उसका घर साफ सुथरा है तो अपने घर गंदगी साफ करो ना।
जी बिल्कुल।
अब अपने घर गंदगी, अगर आपको लगता है कि हमारे हमारी परंपराओं में, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में कोई कमी रह गई है, तो आप सफाई कीजिए उसकी, अपना घर साफ कीजिए, साफ हो जाएगा। वो भी जैसे वो साफ, अगर आप उसने भी अपना घर साफ किया हुआ ना, ये तो नहीं उनमें कुरीति या परंपरा, ऐसा तो कोई देश है नहीं, मैंने पढ़ा है हर देश में कोई ना कोई कुरीति है, लेकिन उन्होंने अपनी कुरीतियों से निजात पाई है, हमने ऐसा नहीं किया। हमने सवाल खड़ा कर दिया और हमने तो सवाल खड़ा करके हमने मान लिया कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हुए कि हमने सवाल खड़ा कर दिया। पढ़ा लिखा समझदार वो होता है जो सवाल खड़ा ना करे, उसका हल ढूंढे।
जी बिल्कुल।
तो हमने अपने घर की सफाई नहीं करी, हमने कूड़ा पहचान लिया लेकिन साफ नहीं किया उसको, और मानने लगे दूसरे घर अच्छा मेरा घर गंदा है। तो हमने इस बारे में ये कहने में मेरा घर गंदा है बहुत शान महसूस की है और लेकिन सफाई करने की कोशिश नहीं करी। अब ये कहाँ का औचित्य बनता है कि मैं अपने घर गंदा कहूँ और दूसरे को अच्छा कहूँ और सफाई करने की कोशिश ना करूँ, ये तो मेरा आलस हुआ ना। अगर मैंने अपनी संस्कृति की कुरीतियों को दूर करने की कोशिश नहीं करी, जैसे राजा राममोहन जी ने सती प्रथा किसी कारण में आई थी, राममोहन जी ने सती प्रथा को खत्म करने की कोशिश की, तो क्या जो भी कुरीति और परंपरा हम देख रहे हैं उनको खत्म करने की कोशिश की हमने? एक राजा राममोहन राय की जिम्मेदारी बनती है क्या? हमारी सामाजिक एक सामाजिक जिम्मेदारी खुद की नहीं बनती कि हम इसको दूर करने की कोशिश करें? कैसे प्रश्न खड़े करते हैं आजकल, ये बहुत फैशन बनता जा रहा है कि प्रश्न खड़े कर देते हैं कि ये चीज गलत है। ठीक है, गलत है, मान लिया मैं आपको कह रहा हूँ कि भावना जी आपका ये बात, ये विचार गलत है, ठीक है, आपका विचार गलत हो सकता है लेकिन गलत विचार का क्या कहते हैं कि इसका हल क्या है फिर उसका? अगर आपका विचार गलत है तो सही क्या है, वो तो पता होना चाहिए ना।
जी बिल्कुल।
जब हम प्रश्न पत्र हल करते हैं तो गलत सवाल हम लेते हैं, ये सवाल गलत है तो हम इसका सही उत्तर ढूंढते हैं ना। तो अगर मैंने आपके प्रश्न, आपके विचार पर सवाल खड़ा किया है तो उसका सही विचार भी बताओ, उसका हल क्या है, वो हम नहीं करते हैं, वो हम नहीं करते।
बिल्कुल
बिल्कुल नहीं करते। हम कहते हैं ये हमारे लिए गलत है, तो सही क्या है, कैसे गलत है, गलत क्यों है, सही क्या रहा होगा, क्या कारण रहा होगा, क्या इस पर मंथन किया हमने?
बिल्कुल।
और जाने जाने क्या हो गया, आज उसका असर क्या हो रहा है, क्योंकि हम दूसरी संस्कृति को दूसरे धर्म का सम्मान करने के चक्कर में अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने देश का ही अपमान कर रहे हैं। तो आज ना तो हम हिंदुस्तानी रहे ना विदेशी हो पाए।
जी जी।
आप ये लगा लीजिए बात की, बात कीजिए जैसे आप बहुत ही मैं अच्छा उदाहरण दूंगा आपको, मैं भाषा पे लगा लीजिए, हम दो दोगलेपन में है, हम जब बात करते हैं हिंदुस्तान की तो हम बात करते हैं क्षेत्रीय भाषाओं की।
जी जी।
कोई भोजपुरी बात करे, कोई पंजाबी बात करे, कोई राजस्थान की बात करेगा, या फिर बात करते हैं हम इंग्लिश की, अंग्रेजी की, ठीक है ना। अब या तो हम करेंगे हम पंजाबी में बात कर रहे हैं या फिर अंग्रेजी में बात करेंगे, हम हिंदुस्तान में और किसी भाषा में बात करना पसंद नहीं करते, क्यों? और आपने देखा होगा हमें अंग्रेजी अच्छी आती नहीं है, हम टूटी फूटी बोलेंगे, व्याकरण भी गलत होगा, अर्थ भी गलत होगा, उसका उच्चारण भी गलत होगा, लेकिन अंग्रेजी बोले में शान महसूस करेंगे, हिंदी बोले में शान महसूस नहीं करेंगे।
पढ़ा लिखा इंसान अपने को शो कर जाहिर करता है कि हम पढ़े लिखे, अगर हम इंग्लिश में बोल रहे हैं और हिंदी में बोल रहे हैं तो हम अनपढ़ है।
नहीं होता क्या है, देखा देखिए क्या होता है कि मैं इवन अपने आपको दक्षिण भारतीय भाषा के बारे में बताता हूँ, इवन जो क्षेत्रीय भाषा है वो भी इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं, उनका उच्चारण अलग होता है, वो अलग बात है, लेकिन वो अपने उच्चारण अंग्रेजी में बोलने में शांति महसूस करें। क्षेत्रीय भाषा, अगर आप क्षेत्रीय भाषा के बारे में इतना गमन करते हो तो अपनी बातचीत भी क्षेत्रीय भाषा में करो, अपने काम क्षेत्रीय भाषा में करो, तो अंग्रेजी क्यों?
जी।
ये एक भाषा की बात हो गई, संस्कृति की बात हो गई, हमें हमें जैसे आप उदाहरण लगा लीजिए, एक आपने आज सुना होगा बहुत ही अजीब सी बात बताता हूँ आपको मैं, हम अपने आप से कितना दूर होते जाते हैं। कॉलेज में आजकल एक चल रहा है आजकल एथनिक डे।
जी जी।
एथनिक डे बड़ा मजाक वाली बात नहीं है, हमारे क्या नहीं लगता कि हम अपना ही अपमान कर रहे हैं, मतलब कि हम अपना ही परिधान पहने के लिए दिल फिक्स कर दिया कि इसे हम अपना परिधान पहनेंगे। मतलब हमारा अपना परिधान हमारे लिए एक कहते हैं एक फैशन बन गया है, मतलब और जो विदेशी परिधान है वो हमारे लिए कहते हैं
अपना बन गया।
हाँ, तो मतलब साड़ी पहनना एथनिक डे की निशानी होती है, और एथनिक का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री का मतलब जो बहुत पुरानी पोशाक हो, तो राजा महाराज पहनते हो या किसी जवान आदिवासी पहनते हो या कोई बहुत ही पारंपरिक पोशाक रही हो उसको एथनिक बोला जाता है, साड़ी को एथनिक नहीं बोला जाता, कुर्ते पजामे को एथनिक नहीं बोला जाता। इवन जब हम एथनिक की बात करते हैं तो हम धोती भी नहीं पहनते, कुर्ता पजामा ही पहनते हैं। तो ये कॉलेज में ये एथनिक देखिए परंपरा का मतलब क्या क्या, हमने अपने आप को एक अपने आप को एक दिन में बांध दिया पूरा साल के लिए, हम दूसरे संस्कृति को फॉलो करेंगे तो क्या हम इतने गर्वित हो गए कि सिर्फ एक एक दिन की परंपरा में हमने हिंदुस्तान की पूरी रीति रिवाज को खत्म कर दिया।
जी जी,
आपने सुना भाई कॉलेज में स्कूल कॉलेज में बहुत चल रहा है आजकल, बड़े बड़े ऑफिस में चल रहा है कि इसमें एथनिक एथनिक डे रहेगा, एक दिन साड़ी पहनी जाएगी। भाई एक दिन साड़ी क्यों पहनी जाएगी, 30 दिन में से 28 दिन क्यों नहीं पहनी जाएगी? तो मतलब हम पैंट शर्ट पहनने में और देखा एग्जीक्यूटिव ड्रेस में कोट पैंट पहनने में गर्व महसूस करते हैं, साड़ी पहनने में शर्म महसूस करते हैं, जबकि साड़ी के बारे में जानते हैं कि सबसे शालीन परिधान यह है। तो क्या हम अपने आप को एक कोने में नहीं समेट रहे हैं?
बिल्कुल ठीक कह रहे
हैं। तो आगे हम कर क्या रहे हैं, हम अपने जब हम आज बात करते हैं कि इंसान विश्व गुरु बनेगा, इंसान 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रही है, इंसान के आईटी इंजीनियर कहते हैं पूरी दुनिया में पैसा बचा रहे हैं, और हिंदुस्तान के डॉक्टर्स पूरी दुनिया में नई नई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनकी पहचान क्या है? अगर एक हिंदुस्तान डॉक्टर है अमेरिका में, उसकी पहचान नमस्ते नहीं है ना?
जी,
आपने शायद खुद ही देखा होगा, मैंने देखा है, बहुत बार देखा है मैंने, हम आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं।
जी,
और कोई विदेशी आता है तो वो ये सोचते हैं कि हिंदुस्तानी में से नमस्ते करो,
हाथ जोड़ते हैं वो।
अब एक विदेशी हमसे नमस्ते करो और हम हाथ मिला रहे तो क्या हम उसके नजर में खुद को पारित नहीं कर रहे?
कोरोना ने आकर तो थोड़े दिनों के लिए लोगों को हाथ जोड़ने के लिए आदत एक बना दी,
लेकिन वो मजबूरी हुई ना, तो हमने वो हमारी संस्कृति का सम्मान नहीं हुआ।
जी,
ठीक है ना। और आपने एक चीज और देखा, ऑब्जर्व किया होगा, इसका जैसे एक धार्मिक पहलू तो हमने टच किया, एक हमने सांस्कृतिक पहलू देख लिया, हमने एक और बताता हूँ देश की बात जो हम करते हैं, तो बहुत एक ट्रेंड बन गया कि हिंदुस्तान का अपमान करना एक बहुत ही आम बात बन गई, हिंदुस्तान का अपमान करो और कहते नाम कमाओ। आज मैंने देखा है कि चाहे स्टैंड अप कॉमेडियंस है मैंने देखा है, और चाहे वो हमारे नेता हैं, चाहे संस्कृति की बात करें, एक तरह से संस्कृति विभाग हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए भारत कार्यक्रम करता है, लेकिन जब भी इंटरव्यू होते हैं तब हम ऐसे बोले जाते हैं जैसे कि हमें किसी विकसित देश को फॉलो करने में ही हम कहते आधुनिक नेता हम बैकवर्ड है। अब जापान ने अपनी संस्कृति को पूरी सुरक्षित रखे हुए क्या उन्नति नहीं करी? किए ना?
जी जी,
जब जापान अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए उन्नति कर सकता है, एक बड़ी इकोनॉमी बन सकता है, तो हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए उन्नति क्यों नहीं कर सकते? हमें पाश्चात्य को फॉलो करने की क्या आवश्यकता है? एक ये मान लिया गया, मैंने देखा है भारतीय मंचों पर हम अपनी देशद्रोही करते हैं और हमें मान लिया जाता है कि हम आधुनिक हो गए हैं, हम नया बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, तो क्या अपनी संस्कृति का दमन विकास की विकास का रास्ता है? क्या सवाल सही है? आपने इंटरव्यू देखा होगा बहुत से लोग, मैं नाम तो नहीं लूंगा कि इनने क्या क्या कहा, किसने क्या क्या कहा, लेकिन बहुत देखा गया है कि हम अपने देश का अपमान बड़ी बड़ी कर देते हैं, हमारे देश की सरकार ऐसी है, हमारे देश की व्यवस्था ऐसी है, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार है, ये है, ठीक है, जो भी हमारे अंदर, अगर मेरा बेटा अगर गलत है उसके डिसिप्लिन नहीं आता तो मैं बेटे को सुधारूंगा ना?
जी बिल्कुल,
है ना। अगर मेरा भाई अगर कोई कार्यकर्ता का काम सही से नहीं कर पा रहा है तो मैं उसको कार्य की पद्धति सुधारूंगा ना, मैं घर से तो नहीं निकाल दूंगा उसको, लेकिन अगर मेरे देश में करप्शन है, मेरे देश में अगर गरीबी है, मेरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको करूँ, वो काम करना चाहिए ना मुझे, खाली बुराई करनी चाहिए मेरे द्वारा। तो क्या हम दूसरे देश की अगर विकसित संस्कृति का और उनके या कह सकते इकोनॉमी का सम्मान करने का अर्थ ये तो नहीं हुआ कि हम अपना अपमान करें? आप देखो आजकल हमें नाम चमकाने के लिए अपने देश को अपमान करने की एक परंपरा चल पड़ी है, तो क्या इससे हिंदुस्तान, क्या नहीं लगता कि जितना हमारा सम्मान हिंदुस्तान का पूरे देश में पूरे विश्व में होना चाहिए उससे हम कहीं गिरा देते हैं इसको?
जी सर बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं।
और एक बात और देखिए, जब हम बात करते हैं समस्याओं की, हम अपनी समस्या को नकार देते हैं, दूसरी समस्याओं को हम ज्यादा बढ़ा चढ़ कर बात करते हैं।
जी।
जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं कश्मीर से पलायन की, है ना, वहां से हम जैसे जब हम बात कर रहे हैं दूसरे देश की, उस दूसरे देश में ये अत्याचार हो रहा, वो अत्याचार हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा है ना, और तो क्या हम अपनी समस्या, हम अपनी समस्याओं को कितना सुधार के रखते हैं? हम ये तो कह देते हैं कि आज बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं नेता लोग कि हमारे देश में वैचारिक मतभेद बढ़ रहा है, धार्मिक सद्भावना खत्म हो रही है। धार्मिक सद्भावना खत्म हो रही है तो धार्मिक स्तर पर बात कौन करता है? सद्भावना खत्म करने की बात कौन करता है? हम ही करते हैं ना। हम अगर हम अक्सर दूसरों को अच्छा दिखाने के चक्कर में अपने ही कहते हैं मानदंडों का प्रयोग ना करें, उसका सम्मान नहीं करेंगे, तो चाहे कश्मीर का इशू हो, चाहे वो कहीं और का इशू हो, चाहे वो धर्मी बात हो, हम तो बटे ही रहेंगे।
जी जी बिल्कुल।
हम इसलिए बटे हैं क्योंकि हम भारतीयता का सम्मान नहीं करते, हम सिर्फ दूसरों का सम्मान करते।
अगर हम आतंकवाद की बुराई कर देंगे, जिहाद की बुराई करेंगे उसके नाम पर, तो उसको किसी धर्म विशेष से जोड़कर देखा जाएगा और फिर सांप्रदायिकता का मुद्दा उठ जाएगा।
नहीं, वही तो बात है ना, अगर हम अगर हम किसी भी कुरीति का बुराई करने के लिए रिजर्व हो जाएंगे, रिजर्व क्यों होते हैं? हम कम ही लगने लगता है कि हमारे देश में इसका विरोध ना हो जाए, हम सच बोलने नहीं कतराते हैं।
जी जी।
अगर हम सच, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो पलायन हो, चाहे वो अशिक्षा हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कमी हो, चाहे कोई जो भी रीजन हो, हम उसको दूर करने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम उस पर गहराई से क्यों नहीं करते? हम उससे सिर्फ बुराई के तौर पर बात क्यों करते?
जी
हाँ ना। अब चाहे वो आतंकवाद चाहे किसी धर्म से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, मानवता से जुड़ा है। हम मानवता को बचाने की कोशिश करने के चक्कर में अपना अपमान क्यों करते हैं कि भाई इस्लाम की बात क्यों, सिख इस्लाम की बात क्यों ना क्यों की जाए, धर्म के सनातन की बात क्यों की जाए? यही बात अगर टकराव इन्हीं दो धर्मों में ईसाइयत से तो टकराव किसी का है ही नहीं ना।
जी।
तो हम खुल के बात क्यों नहीं करते? हम किस लिए? जब देखिए, जब हम देश की बात करते हैं तो हम इस्लाम की या सनातन की या ईसाइयत की या कहते बुद्धिज्म की बात नहीं करते, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। अगर कोई समस्या है तो हिंदुस्तान की समस्या है, किसी धर्म की समस्या, किसी समुदाय की समस्या नहीं है। आप ये लगा लीजिए, जैसे अभी पिछले दिनों की एक बात हुई थी किसान आंदोलन की बात। किसान आंदोलन का मुद्दा पूरे विश्व में इस तरह उठाया गया और जैसे पता नहीं हमारे यहाँ तो किसानों को सबसे ज्यादा दबा दिया गया।
जी जी।
जबकि कोई समस्या थी ही नहीं, तो उनका उनका उस पर जो हमने और उसको हमने एक आंदोलन से जोड़ दिया, एक धर्म समुदाय से जोड़ दिया, और इसे क्या हुआ? हमारे देश का ये पानी हुआ ना।
बिल्कुल।
तो हम जब बात करते हैं अपने देश की तो एक समुदाय की बात क्यों, किसानों की बात क्यों करते हैं खाली? ये किसानी तो इस देश के नागरिक नहीं, सभी तो इस देश के नागरिक है ना।
बिल्कुल।
व्यापारी भी देश का नागरिक है, किसान भी देश नागरिक है, नौकरी पेशा वर्ग भी इस देश का नागरिक है, मजदूर वर्ग भी देश का नागरिक है। तो हमने क्या करना है, एक समुदाय विशेष को इस्तेमाल करने के लिए अपने देश को अपमानित नहीं कर दिया? जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तब हम धर्म की बात करते हैं, जब हम अधिकारों की बात करते हैं किसान की बात करते हैं, जब पिछड़े पर की बात करते हैं तो शिक्षा की बात करते हैं, हम वर्ग विशेष में बात क्यों करते हैं? हम देश के तौर पर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि आप लोग अच्छे हो, हम आपसे सीख रहे हैं, हमें मदद करो, हम तो बैकवर्ड है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ?
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और ये बड़ा एक इस समय का ज्वलंत मुद्दा, इसके ऊपर हमको हर व्यक्ति को सोचना चाहिए इस विषय पर।
हाँ, अगर चाहे वो मजदूर की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, हम माना कि हमारे देश में कमी हो सकती है, हर देश में कमी, ऐसा मुझे कोई ऐसा देश दिखता नहीं, ऐसी कोई संस्कृति दिखती नहीं, ऐसी कोई परंपरा या धर्म या कोई समुदाय नहीं दिखता नहीं जिसमें कुरीति आकर ऐसे परंपरा ना हो।
जी।
बस हमने विरोध करना शुरू कर दिया कि हम क्यों कर रहे हैं।
बिल्कुल।
तो सवाल ये होता है कि चाहे वो हमारे धार्मिक बाध्यता हो, चाहे हमारे सामाजिक रीति रिवाज हो, चाहे हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, हम जैसे आप ये शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, हम जब बात करते हैं कि जैसे हमने विधान देता आजकल मदरसों का बहुत चर्चा कर रही है, मदरसों मदरसों का सर्वे हो रहा है, तो सवाल उठाते हैं कि मदरसों का सर्वे क्यों हो रहा है? सवाल ये होता है कि मदरसे गलत नहीं है, गुरु भी गलत नहीं है, मदरसे होने से गुरु भी होना चाहिए। तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का मतलब ये नहीं होता कि आपने साइंस पढ़ लिया और आप पढ़े लिखे हो गए। पढ़े लिखे का मतलब ये होता है कि आपके अंदर चिंतन मनन की अधिक शक्ति आती है।
बिल्कुल,
मुझे विज्ञान का सिद्धांत आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर चिंतन समझ आ गई। ठीक है ना, हमारे गुरुकुल व्यवस्था में चाहे मदरसों की व्यवस्था में ये सिस्टम है कि ये ऐसा प्रावधान है कि हम धर्म को भी समझे, समाज को भी समझे और मानवता को भी समझे। और जो शिक्षा धर्म मानवता समाज को समझा सकती है वही समाज आगे बढ़ सकता है और वही विज्ञान आगे बढ़ सकता है। अगर हम विज्ञान समझ के धर्म समाज और मानवता से अलग हो जाएंगे तो विज्ञान का फायदा है, क्योंकि विज्ञान का उपयोग करने वाला मानवता टूट जाएगा, बिखर जाएगा। क्योंकि ना तो हम धार्मिक रूप से परंपरा में बने हुए हैं, ना ही सामाजिक रूप से बने हुए हैं और ना ही मानवता के रूप से जितने भी कर्तव्य से जुड़े हुए। तो खाली हमने अपनी जो पर्यटन शिक्षा पद्धति चाहे मदरसा हो चाहे गुरुकुल हो उसको खत्म करके क्या पाया। आज हम जब गुरुकुल मदरसे की बात करते हैं तो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं और हम कॉन्वेंट में पढ़ना सम्मानित महसूस करते हैं। कॉन्वेंट में पढ़ी, मैंने देखा कॉन्वेंट में पढ़ने वाले आखिर क्या हुआ, उनको साइंस का फॉर्मूला ही तो मिला, अंग्रेजी तो बोली आई है ना, लेकिन मानवता तो उनके दिमाग से चली गई, संस्कृति उनके दिमाग से चली गई। हमारे जो धार्मिक परंपरा है वो तो उन्होंने सीखी नहीं, तो हमारे पास आधार क्या जीने रहने का। अब ऐसा जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके निकलेगा तो वो अपने हमारे देश का अपनी परंपराओं का अपमान नहीं करेगा तो क्या करेगा, उसको ये लगेगा कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, मैं पाश्चात्य फॉलो कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की संस्कृति फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं रूढ़िवादी नहीं हूँ, मैं आधुनिक हूँ। तो क्या सवाल यही है, आधुनिकता का मतलब क्या है, रूढ़िवादी होना होता, रूढ़िवादी होना गलत कैसे है, सवाल ये होता है रूढ़िवादी गलत कैसे, हमने सवाल उठाते रूढ़िवादी है तो गलत है, रूढ़िवादी होना गलत नहीं है अगर हमें जब तक उसका कारण नहीं पता, जब तक कारण नहीं पता तब तक गलत है और जब कारण पता है तो फिर गलत है, तो हम उसको समस्या समाधान कर सकते हैं ना।
बिल्कुल,
तो ये अब ये आपने देखा होगा किसी और देश की परंपरा जल्दी से नहीं बदलती, हिंदुस्तान में परंपरा बहुत जल्दी बदलती है
क्योंकि हम खुद ही बदलते हैं उनको।
नहीं नहीं, उसके मतलब हमें पता ही नहीं परंपरा शुरू कैसे हुई।
बिल्कुल,
जैसे मैं आपको एक मैं घटना बताता हूँ, मैं आपको ये बात तो मेरे सामने से मेरे के जानने वाले की है, किसी के घर में गृह प्रवेश होना था। वो आदमी मतलब बैंगलोर में नहीं थे तो उनके घर गृह प्रवेश होना था, उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, नहीं आ पा रहे थे। उन्होंने क्या बोला, पंडित जी हम आपको पैसे दे देंगे, आप गृह प्रवेश कर दीजिए। तो पंडित जी अकेले गए, उन्होंने पूजा वजह की, आ गए। अब बताइए घर किसी और का, पूजा कोई और कर रहा तो आपको गृह प्रवेश कैसे हुआ।
बिल्कुल,
तो मतलब उन्होंने गृह प्रवेश सिंबोलिक बना के पूजा की, सिंबोलिक पूजा करनी है और हमारा गृह प्रवेश हो गया। लेकिन गृह प्रवेश में जो तिलक होता है, जो गृह लक्ष्मी अंदर आती है, जो गाय अंदर आती है, वो जो उसके पीछे जो जो भावना है उसके पीछे की, वो तो नहीं हुई ना,
वो भाव ही नहीं आया तो कैसे पूजा,
भाव नहीं आया तो आप जब आपने घर देखा ही नहीं, पूजा में आप बैठे ही नहीं, मतलब आपने तो सिर्फ सिंबोलिक कर दिया, अब कारण ही नहीं पता गृह प्रवेश क्यों किया जाता है। तो मतलब ये रह गया कि आपको खुश होने के कारण भी नहीं आते, क्योंकि भाई अगर जब गए तो उसके बाद खुश होता ना, मैं अपने घर में जा रहा हूँ।
जी जी बिल्कुल,
तो आपने तो खुशी के कारण भी नहीं समझा पहले। तो हम जब तक अपने प्रतीकों को सिंबॉलिक मान के चलेंगे, उनके कारणों को नहीं जानेंगे, तब तक ये निवार शायद मुझे लगता है कि हमारे समाज को कुछ करना चाहिए कि हम अपनी पीढ़ी को ये बताएं कि जो हमारी रीतियां हैं वो सिर्फ रीतियां नहीं है, हमें वो गलत इसलिए लगते हैं कि हम उनके किसी कारण नहीं पता है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने पीछे इनके पीछे के कारण को पता करें कि शुरू कैसे हुई थी। हम सच्चाई से बहुत दूर आ गए हैं, हम अपने देश की संस्कृति से बहुत दूर आ गए हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो संस्कृति वो पद्धति और वो व्यवस्था है क्या। हम उसका आधार ही नहीं पता, हम जानते ही नहीं उसका आधार क्या है, तो क्या हम उस आधार पर दोबारा जा पाएंगे, क्या उस पर विचार कर पाएंगे, क्या उसको ढूंढ पाएंगे, सवाल ये है। अब हमें आधार नहीं पता है तो स्वाभाविक रूप से एक युवा व्यक्ति जिसको नहीं पता मेरी परंपरा आधार क्या है, वो तो जुड़ेगा ही ना दूसरे से, उसको दूसरी व्यवस्था में लॉजिक दिख रहा है, उसको हमारी व्यवस्था में लॉजिक नहीं दिख रहा उसको।
आपके प्रश्न जो है वो हमें सोचने पे मजबूर करेंगे सर, और मेरे ख्याल से लोग इस विषय पर एक आजकल ये चर्चा वैसे उठ चुकी है, हम अपने अपने धर्म का अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं, तो इसके ऊपर और चर्चा की जरूरत है और आपने बहुत ही सटीक प्रश्न आज उठाए।
ये यही बात है कि सबका अपमान कीजिए, अपना अपमान मत कीजिए। और ये आज का समय बन गया अपना अपमान करने का, तो मैं तो अपने देशवासियों से, अपने भाई बहनों से यही कहूंगा कि अपने देश में, अपने संस्कृति पर, अपने धर्म पर प्रश्न उठाने से पहले कुछ कारण जान लें पहले।
बिल्कुल बिल्कुल,
अगर आप कारण नहीं जान सकते तो प्रश्न भी मत उठाने।
जी बिल्कुल,
हो सकता है आपके आपके पास उत्तर ना हो, लेकिन आपके पास उत्तर होने का मतलब ये नहीं होता कि वो आधारहीन हो गया। वो उत्तर आपके पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं उसमें उत्तर नहीं है। तो क्या हम इसका उत्तर जान पाएंगे, ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ।
जी सर बिल्कुल, आपने हमेशा की तरह इस बार भी अपनी आवाज़ की बातें में एक सवाल छोड़ा है, और श्रोताओं से हम यही अपेक्षा करेंगे कि वो इन सवालों को ढूंढने की कोशिश करें। हम सब ढूंढे इन बातों को, और हम सबसे इस तरह की गलतियां शायद होती हैं, हम कर जाते हैं, तो हम एक बार इसके ऊपर एक नई नजर से सोचने का प्रयास करें। बहुत बहुत आभार सर आपका।
मैं चाहूंगा श्रोता जी अपनी राय दे कि इस पर और चिंतन मनन किया जा सकता है। मैंने तो प्रश्न उठाया कि इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है, इस पर ना लिखा गया ना बोला गया।
जी सर बिल्कुल, बहुत बहुत ही आभार सर आपका, आज आपने इतने अच्छे विषय पर हमें जानकारी दी, और अगले महीने देखते हैं फिर आप कौन सा नया विषय लेकर आते हैं। तब तक के लिए हम लोग श्रोताओं से अनुमति लेते हैं सर। नमस्कार,
आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं नमस्कार।